आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक, और हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी। जी हाँ, आज हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में जानेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ बनी हुई है डॉक्टर उदयना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू मैम। नमस्कार शिक्षार्थियों, जैसा कि मैम ने अभी अभी आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी के लिए में, तो उससे पहले कि मैं अपनी चर्चा स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर अपना जो हमारा सेकेंडरी का कोर्स है उसमें लेसन नंबर 13 की, और वर्क एंड एनर्जी कार्य और ऊर्जा। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही शिक्षार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि जब भी वो साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए अगर सुनने बैठते हैं तो उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा कि वो अपनी किताब को साथ में लेके बैठें, ताकि कुछ डाटा कुछ फैक्ट्स अगर मैं बुक से डिस्कस करूँ तो आप लोगों को जो है वो वहाँ पर समझने में और आसानी हो। हम सब जानते हैं जितनी ज़्यादा हमारी सेंसेस यूज़ होती हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी लर्निंग होती है। आप मेरे सुनने के साथ साथ अगर किताब में लिखा हुआ भी साथ में देखेंगे और मेरे साथ बोले हुई बात को उसके साथ कोरिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको समझने में चीजों की आसानी होगी। हम बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी लेसन नंबर 13 पेज नंबर 294 बुक 2 का। हम लोगों ने इससे पहले चर्चा करी है, जो वो हमने बात करी मोशन की, गति क्या होती है, विराम क्या होता है, फिर हमने बात करी कि गति और विराम की अवस्था जो है वो किस वजह से होती है, तो दैट इज अ फोर्स। फोर्स में हमने बात करी कि अलग अलग तरह की फोर्सेस जो है वो वस्तु पे लगती हैं, उस फोर्स के जो अलग अलग तरह की फोर्सेस हैं, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फोर्स वहां पे अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह की आपको डिस्प्लेसमेंट वहां पे चाहिए। तो जब आप फोर्स की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो आप उसे क्या नाम देते हैं? आप देखिए कि हम लोगों ने अलग अलग फोर्सेस के थ्रू जो है वो क्या किया, वहाँ पे किसी ना किसी तरह से गति को या तो कंट्रोल किया या उसे रेस्ट वाली चीज़ को गति में लाए, गति वाली चीज़ को रेस्ट लाए। तो अगर हम बात करें कि वी डिड सम वर्क, हमने क्या किया, कुछ काम किया, और आज हम उसी कार्य के बारे में बात करेंगे। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक होती है लेमैन लैंग्वेज जिसे हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, और एक होती है साइंटिफिक लैंग्वेज, वैज्ञानिक भाषा। वैज्ञानिक भाषा में जो होता है वो आपके शब्दों की जो परिभाषा है वो भिन्न होती है जो हमारे दैनिक जीवन के जो भी हमारी परिभाषाएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात वो करूं वर्क की, कार्य क्या है, व्हाट इज वर्क, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि हम तो पूरा दिन काम ही करते हैं, और आप हर चीज को कार्य में ले लेंगे। जैसे कि आपने खाना खाया, आपने पढ़ाई करी, आपने कुछ और काम किया, ठीक है, इवन कि आप अपने घर से निकले, दुकान तक गए, दुकान से निकल के घर तक आ गए, तो हुआ क्या, आप घर से गए घर ही आ गए, तो आपको लगा कि आपने तो बहुत कार्य किया। मगर अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो आपने कोई भी कार्य नहीं किया। तो जो वर्क है उसको अगर हम कॉमन टर्म में बात करें, अपनी डे टू डे बातचीत में जो हम लोग करते हैं, तो हमें हर चीज जो है जो हमें थका देती है उसे हम काम कहते हैं। जबकि अगर हम साइंस की बात करें तो काम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एंड वो जो है हम कह सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम लोग कहते हैं कि कार्य हुआ। मतलब कि कब हुआ कार्य, कार्य तब हुआ जब आपने किसी पर्टिकुलर चीज में फोर्स लगाई, उस फोर्स के लगने से उस वस्तु पे जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट, कुछ उसने अपनी पोजीशन में चेंज लाया, देन देयर इज ए वर्क। जो मैंने आपसे बात करी कि आपने घर से दुकान और दुकान से घर आए, हुआ क्या, आपका डिस्टेंस जो था वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसी बिंदु से स्टार्ट हुए और उसी बिंदु पे वापिस आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जीरो, एज पर द साइंटिफिक। क्योंकि हम उसे मेजर करें तो वो आपका 0 हो गया। ऐसे तो आपने देखो 1 किलोमीटर गए होंगे, 1 किलोमीटर वापिस आए, तो आपको लग रहा है आप तो 2 किलोमीटर आए, मगर क्योंकि हम लोग वहां से गए और वापिस आए तो वो आपका 0 हो गया। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पे कार्य नहीं हुआ। तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो आपका फोर्स जो है वो अप्लाई करने पे अगर बॉडी मूव करती है तो कार्य होता है, और बॉडी मूव नहीं करती है तो कार्य नहीं होता है। ये साइंटिफिक हम बात कर रहे हैं, बाकी आपके दैनिक जीवन में आपके कार्यों की अलग अलग परिभाषा है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई दीवार गिरानी है और आप उस दीवार को गिराने के लिए आप खूब जोर लगाते हैं, या आप समझिए कि आपने बस को धक्का मारना है क्योंकि बस स्टार्ट नहीं हो रही है और आप खूब धक्का मारते हैं उसको, तो आपको तो फील क्या होगा कि आपने खूब एनर्जी लगाई, आपको थकावट भी फील होगी, और आपने क्योंकि वहां पे मूवमेंट नहीं हुई तो आपने कार्य नहीं किया, जबकि आपके हिसाब से आपने बहुत कार्य किया। तो आपका अगर फोर्स अप्लाई करने पे कोई कार्य नहीं होता है तो देन वो हम लोग कह सकते हैं कि देर इज नो वार। इसे और अच्छे से समझना है तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 13.2 पॉइंट की, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि हम कह रहे हैं कि कार्य तब होता है जब आपका वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है एक फोर्स लगाने के बाद। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसे बात करूं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तब हम कहते हैं कि देयर इज ए वर्क डन, कार्य हुआ। अब देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क अपने आप 0 हो गया। व्हेन वी मल्टीप्लाई समथिंग विद द 0, इट एंड्स विद द 0, तो 0 हो गया। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, किसी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या किसी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो डेफिनेटली अगेन द प्रोडक्ट विल बी 0, तो फिर आपका वर्क तब भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम इन द सेम डायरेक्शन, तब तो हमें पता ही है कि हम उसका प्रोडक्ट निकाल के वर्क फाइंड कर लेंगे, और अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में हो तो एन वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपनी बुक लेके बैठे। अब देखिए, आप फिगर नंबर 13.2 जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन दैट पर्टिकुलर केस इफ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन देन इट्स इक्वल टू एफ इंटू पी आर। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए वर्क डन जो है वो एफ इंटू पी आर है, जबकि ये एफ इंटू पी क्यू नहीं होगा। तो ये आपको समझना है कि प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हम लोग कैसे करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि कार्य जो है वो हमारा तब काउंट होता है जब हम लोग ये बात करते हैं कि आपने कोई फोर्स अप्लाई करी और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद जो है वो वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुई। मगर आपने कभी देखा कि आप अगर किसी चीज को, मान लो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि आप गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, आप गाड़ी को बहुत देर से धक्का मार रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर आप उसे धकेल तो पा रहे हैं मगर उतनी मोशन से धकेल नहीं पा रहे हैं कि वो उसका स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में आपको जो है क्या फील होता है? आपको लो फील होता है, आपको थकावट फील होती है। कई बार आपने बहुत सिंपल सा वर्ड यूज किया होगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। व्हाट डज यू मीन बाय द वर्ड एनर्जी? एनर्जी से आपका मतलब क्या है? एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग जो है वो ऊर्जा कहते हैं। आप देख लीजिए, आप इसे दैनिक जीवन में भी देखिए कि हम लोग कहते हैं कि इसमें बड़ी एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है। जिसने टेबल ऊपर उठा दिया उसने, उसकी एनर्जी ज्यादा है। अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट करेंगे तो वो दैट इज द पावर। तो आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो आपका जो भी, हम लोग कई बार आप देखिए कि आप खेलते खेलते थक जाते हैं, फिर आपका और ज्यादा खेलने का मन नहीं करता, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी। फिर आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप रेस्ट लेते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, आप खाना खाते हैं, एनर्जिक ड्रिंक पीते हैं और आपको फिर से एनर्जी आती है। सम टाइम्स हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, उसके बीच में हमें प्यास लगती है, हमें अनईजी फील होता है, हमें एनर्जी फील नहीं होती है, हम पानी पीते हैं, पानी पी के हमें फिर से एनर्जी फील होने लगती है, क्योंकि वो डेफिशिएंसी हमें फील होती है, तो वो हम लोग ऊर्जा जो है वो वहाँ पे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपने कॉमन जो है वो चीज़ें नोट करी हैं कि किस तरह से हमारी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और किस तरह से हम अपनी एनर्जी को जो है वो रीगेन कर लेते हैं। सेम विद द मशीन्स, सेम विद द अदर थिंग्स। तो कोई भी चीज़ है, वो चाहे ह्यूमन है, चाहे आपका एनिमल है, चाहे आपकी मशीन है, तो जिसकी भी कार्य करने की जो क्षमता है वो उसकी एनर्जी कहलाई जाती है। और अगर हम कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज डिटरमाइंड द एनर्जी, और इसे अगर हमें पजेस्ट करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज एनर्जी पजेस्ट बाय ए बॉडी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क दैट द बॉडी कैन डू। और टोटल वर्क हमने कैसे निकाला? दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं, तो सॉरी मैं भूल गई उसके लिए बात करने के लिए, कि वर्क की जो यूनिट है आपकी, दैट इज अगेन द एसआई यूनिट की मैं बात कर रही हूँ। एसआई यूनिट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मगर अभी मैं एसआई यूनिट्स की बात कर रही हूँ। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो थी, दैट इज न्यूटन मीटर, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NM लिखते हैं, N फॉर न्यूटन, M फॉर मीटर। और कंबाइंड न्यूटन मीटर को जो है वो एक नोटेशन दी गई है, दैट इज नोन एज द जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। इव और जूल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 जूल वर्क इज डन व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कब? व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब वो मूव करती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू द वर्क दैट द बॉडी कैन डू, तो जो एनर्जी की यूनिट है दैट इज अगेन सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क एंड दैट इज जूल। अब हम लोग बात करेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ चीजें आप करने के लिए अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो उनको करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि हम उसे टेक्निकली टेक्निक से करते हैं तो आपको उसको कम लगानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब, अब तो शायद घर में चूल्हे नहीं हैं, इन केस अगर आपने चूल्हा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चूल्हे में आग जलाने के लिए जब हम फूक मारते हैं, तो अगर हम मुंह से फूक मारते हैं तो हम उतना प्रेशर नहीं बना पाते हैं, जबकि एक पाइप सी होती है लोहे की या वुड की, उसके थ्रू जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो वो एयर जो है वो प्रेशर से जाती है, जिसकी वजह से वहां पे वो आग जलती जलती है। इसी तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम, मुझे कोई भारी वस्तु उठानी हो तो उस भारी वस्तु को मैं अगर डायरेक्ट उठाऊं तो मुझे मुश्किल होती है, जबकि आपने देखा होगा कि वही जो है वो लीवर पे उठाई जाती हैं तो इजी हो जाती हैं। आपने ये तो बहुत जरूरी देखा होगा कि जब कार का टायर पंचर हो जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं, और कार जो है वो एक जैक पर, आप देखिए कैसे एकदम से मूव करता है जब हम उसको उससे टूल से खोलते हैं, तो अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट एबल टू डू। तो एनर्जी किस तरह से लगाई जाती है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो इस वक्त हमारा विषय वस्तु नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी ऊर्जा के अलग अलग प्रकार होते हैं और उनकी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है, इट्स ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट ए बॉडी पजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, या फिर आपका इट्स ए पोजिशन, या तो वो जो जिस अवस्था में है उसकी वजह, उस अवस्था की वजह से जो उसमें पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या फिर जब वस्तु मोशन में है और उस गति होने की वजह से जो उस वस्तु में जो एनर्जी है दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज द सम ऑफ द बोथ एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपकी वस्तु विराम अवस्था में है तो डेफिनेटली उसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो उस केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है वो आपकी जो भी होगी वो वहां पे होगी. इन केस आपकी गति में है तो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कैसी है, किस तरह से है, तो भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. और समटाइम्स इट मे हैपन कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो और आपकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो. पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ए बॉडी रेज टू ए सर्टेन, देखिए आप इसको देखिएगा कि मान लीजिए आपके टेबल पे कोई भारी सी वस्तु जो वो रखी हुई है और आपकी गलती की वजह से किसी भी वजह से वो भारी वस्तु आपके पैर पे पड़ गई, क्या होता है? डेफिनेटली इतने सालों में आपने एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कोई चीज अचानक आके गिर के आपके ऊपर टकरा गई. इवन की बुक ही मान लो, बुक आपने ऊपर रखी है आपके ऊपर आके गिर गई, तो क्या होता है? वी फील फोर्स, वी फील हर्ट, हमें चोट लगती है. और चोट लगने का क्या कारण है? कि उस वस्तु में, उस किताब में कोई ऊर्जा थी जिस ऊर्जा की वजह से वो हमें चोट लगी. तो आप देखेंगे कि जब भी वो वस्तु नीचे गिरती है तो वो ऊर्जा जो थी वो किस वजह से थी, उसकी जो पोटेंशियल था, जो उसका बैठ जहां पे वो थी उसी अवस्था में जो उसका पोटेंशियल था वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी. अगर हम बात करें तो देखिए आप जितनी भारी वस्तु होगी उतनी ज्यादा, अब आपके ऊपर एक कागज गिर जाए या बुक गिर जाए तो देखिए नो डाउट कि कागज जब गिरेगा तब भी आपको फोर्स फील होगी. आपको इतना तो फील होता है ना कि कुछ गिरा, ये अलग बात है कि उससे चोट नहीं लगती है. और वहीं पे आपको 200 किताब पेजेस की किताब गिर जाए और अगर 2000 पेजेस की किताब गिर जाए क्या होगा? देन डेफिनेटली तीनों में जो है वो आपका डिफरेंस होगा जो फोर्स आप फील करेंगे. तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो पहली बात है कि वो वेट ऑफ द बॉडी, कि उस वस्तु का भार कितना है, और दूसरा वो डिपेंड करती है इस बात पे कि वो कितनी ऊंचाई से गिर रही है, क्योंकि वो जितनी ऊंचाई से गिरेगी उसी के हिसाब से वो, मैं उस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे फिनोमना चेंज हो जाता है, तो आपका हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड पे डिपेंड करती है. अगर हम बात करते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू W इंटू H, और हमें पता है कि वेट किसके बराबर होता है, mg, m फॉर द मास, g फॉर द ग्रेविटेशनल पुल. अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु के स्थिर अवस्था में रहते हुए जो उसका पोटेंशियल है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब वो मोशन में है, उस मोशन, उस गति की वजह से जो उसमें एनर्जी है, तो देखिए आपका कि जितनी स्पीड से गाड़ी होती है और वो किसी चीज को हिट करती है तो जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ही ज्यादा डैमेज, ठीक है, उतना ही ज्यादा नुकसान होता है, किसका, गाड़ी का भी और जिस चीज के साथ वो टकराती है उसका भी. तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. तो इट्स ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट ए बॉडी हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. और अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये एक्टिविटी आपके 13.2 पॉइंट इस पे दी गई है, आप उसको घर पर भी कर सकते हैं. जैसे कि किताबों का एक स्टैंड बनाया, उस पे एक स्लोप बनाई, स्लोप पे आप कोई चीज रोल करिए और उस रोल को कहीं जाके हिट करवाइए, तो आप देखेंगे क्योंकि ये हल्की वस्तु की बात हो रही है तो डेफिनेटली आप हल्की वस्तु रखेंगे तभी आपको मोशन फील होगा. अगर आप वहां पे कोई बड़ी वस्तु रख देंगे तो नहीं समझ में आएगा. तो देखिए इन्होंने एग्जांपल के लिए सेल और मैच बॉक्स लिया है, आप यूज करिए उसको, डेफिनेटली यू विल हैव द फन, आपको मजा आएगा इस एक्टिविटी को करने में और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जब जैसे आप उसमें और हाइट बढ़ा दोगे, तो हाइट के बढ़ने से वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, गति के बढ़ने से जो है, अगर आप उसको तेज स्पीड से भेजते हैं तो उसका जो पुल है, जो फोर्स जो उस पे लगेगी, वो भी ज्यादा हो जाता है। ये जब आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो देखिए आप एक चीज और देखेंगे कि मैंने कहा आपको मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब वस्तु गति अवस्था में होती है तो जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ेगी उसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती चली जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट। और काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो वस्तु के भार पे, दूसरा वस्तु की जो किस अवस्था से वो गिरती है उस चीज पे, कितनी हाइट पर है। काइनेटिक एनर्जी आपका फिर मास पे डिपेंड करती है, और साथ में बात करें डिपेंड करती है वो उसकी वेलोसिटी का। तो मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा वेलोसिटी, जितनी तेज गाड़ी और जितनी तेज वेलोसिटी से कोई गाड़ी जो है वो किसी दूसरी चीज को हिट करती है, उतना ही ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दैट इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर, और आपका पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय द एम जी एच, एम फॉर द मास, बी फॉर द वेलोसिटी। ये तो मेन आपकी जो है यूज होती है। इसके अलावा है हमारे पास थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल की हम बात करें तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज इनटू अवर बॉडी टू गिव अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड आउट ऑफ अ बॉडी टू गिव अस ए सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, थर्मल एनर्जी जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस को जो हम फील कर पाते हैं उस एनर्जी को ही हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वी विल लर्न अबाउट द थर्मल एनर्जी इन टू द लेसन 14। देन अगेन इट्स ए लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। लाइट एनर्जी, लाइट जो इसके प्रकाश, प्रकाश के ना हो तो हम लोग चीजों को देख नहीं पाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस में बात करेंगे लेसन नंबर 15 में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपने देखी ही है घर में, आप कोई भी काम आजकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी कॉमन हो गई है, आपको लाइट चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे। किचन में आपको मसाला पीसना है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करेंगे। फिर आपने कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपका जो फ्रिज है इलेक्ट्रिक एनर्जी, देयर आर नंबर ऑफ, और हमारी बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और इसके बारे में हम बात करेंगे लेसन नंबर 16 में। मैग्नेटिक एनर्जी, जो एक मैग्नेट के द्वारा एनर्जी होती है उसे हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी करेंगे, जिसकी बात हम लेसन नंबर 17 में करेंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं साउंड एनर्जी की। साउंड एनर्जी, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू हियर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए साउंड। और साउंड जो है ये आपको ओरिजिनेट्स व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स गिविंग आउट वेव्स। देखिएगा आपको जब हम लोग इसके बात करेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में, तब आपको पता लगेगा कि साउंड एनर्जी किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी ये एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ी हमने ये? हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी थी जब हम लोगों ने बात करी थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, लेसन नंबर 12 में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जब मैंने नॉन कन्वेंशनल फोर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करी थी, आपके जो अनवीनीकरण स्रोतों की जब हमने बात करी थी, वो स्रोत जो आपके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनके, मतलब कि हम यूज कर सकते हैं मगर वो फिर भी कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद भी अगर वो होते हैं तो वो आपका उसके अंदर आता है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी का आपका हम लोग नॉन कन्वेंशनल में बात करते हैं, मगर फिर भी जो रिएक्शंस हैं आपके उनके कहीं ना कहीं एक टाइम के आने के बाद जो है वो लिमिट होने की गुंजाइश रहती है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जो बात करी थी वो लेसन नंबर 20 में, 12 में करी थी, सॉरी। और आपने देखा था कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों को यूज करके हम लोगों ने किस तरह से उस एनर्जी को बाकी और कार्यों के लिए यूज किया। तो ये तो हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करी। अब देखिए, आपने जब हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, ऊर्जा के स्रोतों की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के स्रोत थे, एक नवीकरणीय स्रोत थे और एक अनवीकरणीय स्रोत थे। चाहे हमारे स्रोत नवीकरणीय थे, चाहे हमारे स्रोत अनवीकरणीय थे, मगर हम लोगों ने दोनों ही स्थितियों में जो स्रोत थे उनका हमने अपने नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उनका जो है वो हमने एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया। जैसे कि आपने देखा कि हमने सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य की लाइट है, उससे हमें क्या मिला? हीट मिली, तो उससे हमें ताप मिला, और उस सूर्य के प्रकाश को हमने सोलर एनर्जी को कंज्यूम किया और ट्रांसफॉर्म किया। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। कैसे? सोलर पैनल से। तो वो क्या हो गया आपका? रूपांतरण। तो अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कंजर्वेशंस में, कि हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और कंजर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है इसके बारे में, सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले जो सूर्य की हमारी जो प्रकाशीय ऊर्जा थी, उसको हमने ऊष्मीय ऊर्जा में भी ट्रांसफॉर्म किया। उसको, उसके ताप को भी हमने लिया। प्रकाश तो हम ले ही रहे, लाइट तो हम उससे ले ही रहे, दिन में हम लोग उसका कार्य कर ही रहे। मगर बट अबाउट कि जब वो आपका सूर्य जो है छिप जाएगा उसके बाद, तो हमने सोलर पैनल के थ्रू उसको जो है वो हमने उसको कंजर्व कर लिया, और फिर हमने उसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसे हमने रात के टाइम भी यूज किया। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को हमने दिन टाइम में तो यूज किया ही किया, बल्कि उसको हमने उसके सूर्य के ढलने के बाद भी किया। तो आपको अच्छे से पता होगा कि अब हमारा, हम सोलर पैनल के थ्रू सोलर एनर्जी का खूब यूज करते हैं। किस किस चीज में? लाइट एनर्जी में, आपका हीट एनर्जी में। देखिए, आपने देखा होगा सोलर गीजर, सोलर लाइट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सोलर से यूज कर लेते हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है, हम लोगों ने जो पीछे बात करी, और उससे पहले हमने ऊर्जा के स्रोतों की भी बात करी थी। तो जो भी आपके इस ऊर्जा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऊर्जा या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई अलग अलग ऊर्जा का हम लोग क्या कर लेते हैं? एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में उसका जो है हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं। और जो हम लोग एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जो उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ऊर्जा को जब हम लोग स्टोर कर लेते हैं किसी दूसरी ऊर्जा के रूप में या फिर उसी ऊर्जा के रूप में, तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेशन, कि हमने उसे कंजर्व कर लिया, उसे हमने बढ़ा कर लिया। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल, आप लगाइए अपना दिमाग, सोचिए आपने क्या क्या जो है वो ऊर्जा का देखा। तो एक तो हम आपको कह ही रहे हैं कि हमने सूर्य का हमने बताया आपको। इसके बाद मैंने अभी अभी आपसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी की बात करी थी, जिसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात हुई थी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और फिर जो है वो उस एनर्जी को हम लोग जो है वो अलग फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए डैम चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। पानी आपने स्टोर कर लिया, उसका पोटेंशियल आपका एक बन गया जब आपने स्टोर किया, और जब उस पानी को आपने एक हाइट से गिराया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हुई हो गई, और उस काइनेटिक एनर्जी से जो आपने रोटेशन ऑफ ए टर्बाइन कराई, उस रोटेशन ऑफ टर्बाइन से आपका जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के ने जो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, एक ही प्रोसेस में कितनी चीजें हुई। पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। काइनेटिक एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से जब हाइट से गिराई गई तो वो आपका मोशन में आ गई। मोशन में आते ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, टरबाइन को घुमाया। टरबाइन को घुमाने से जो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, ये हम लोग बात करेंगे आगे। और उस मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने से जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे जो है वो तैयार हुई, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से ये तो आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो कन्वर्ट होते हुए तो देखते ही हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने अगर बल्ब जलाया तो लाइट में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने हीटर जलाया तो क्या हुआ, वो आपकी जो प्रकाशीय ऊर्जा सॉरी आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जो विद्युत ऊर्जा थी, वो आपकी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपने कपड़े धोने की मशीन चलाई तो उसने उसको रोटेशन में लाना शुरू कर दिया, तो वो आपकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी एनर्जीज को बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं, आपने बेल देखी है बजती हुई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो उसे आपकी मैग्नेटिक एनर्जी भी चेंज कर देती है और उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बेल बजती है। तो आपका जो है कोई भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, देखिए तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरी जो साउंड है वो डिफरेंट एनर्जी से होते हुए आपके पास पहुंच रही है। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो हमारी जो कन्वर्जन है वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो इसमें स्थानांतरित हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब इसमें एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखे स्टोर करा है या हमने परिवर्तित करी है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एक जैसी ही रहती है। तो जैसे मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी की बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड आपका दोनों का सम जो है दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली आप ऊर्जा का एक तरीके से दूसरे तरीके में जब आप यूज करते हैं तो जो उसका सम है वो हमेशा इक्वल रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपने ज्यादा एनर्जी लगाई मगर आपका कम आउटपुट आया, तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पे और कुछ जो है अदृश्य जो है कंजम्पशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो वो अदृश्य कंजम्पशंस जो है अगर आप उनको भी नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली टोटल जो होता है वो आपका वही रहेगा। यहाँ पे ये भी बात होती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी ऊर्जा है ना तो क्रिएट होती है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस हम लोग एक चीज कर सकते हैं, एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में उसका यूज कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर देखिए, जो वस्तु खड़ी है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो चल रही है उसमें सॉरी उस जो वस्तु खड़ी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जो वस्तु चल रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। मगर एनर्जी वहां पे है, वी आर नॉट क्रिएटिंग, हम लोगों ने उसे कन्वर्ट किया पोटेंशियल से काइनेटिक को। काइनेटिक वाली ने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिक में कर दिया, इलेक्ट्रिक वाले ने उसे लाइट में कर दिया। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं, मगर आपका जो है वो रूप बदलता है। एनर्जी था वहां पे, थी वहां पे, है और वहां पे रहेगी, और उतनी ही रहेगी जितनी है। अब हमने बात करी कार्य की और फिर हमने बात करी कार्य करने की क्षमता की। तो कार्य होता है कि किसी भी तरह से जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होती है उसके लिए, और उस कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो हमारी ऊर्जा होती है और पावर। अब देखिए कि कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षमता किस पर डिपेंड करती है। क्या 6 साल का बच्चा 6 किलो का भार उठा पाएगा या 15 साल का बच्चा 6 किलो का भार इजीली उठा पाएगा। तो कार्य करने की क्षमता अलग अलग क्यों है और क्या सब में एक जैसी होती है? आप ऑब्जर्व करिए, अवलोकन करिए अपने आसपास का, थोड़ा सा दिमाग खोलिए, सोचिए, क्या सबके कार्य करने की क्षमता एक जैसी होती है? क्या आपकी मदर की कार्य करने की क्षमता आपके फादर के कार्य करने की क्षमता के बराबर है? क्या आपके एज ए चाइल्ड कार्य करने की क्षमता अपनी मदर के कार्य करने की क्षमता के बराबर है? नहीं ना, वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि कार्य करने की क्षमता जो है वो पावर पे डिपेंड करती है, और पावर जो है दैट इज आपकी शक्ति। और देखिए, हमने जो बात करी कि हमने कहा कि कार्य करते हैं, अब हमने कार्य तो कर लिया, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना था वो तो कर लिया, तो हम ये तो कह रहे हैं कि कार्य हो रहे हैं, मगर आप देखिए किसी कार्य को एक जो है वो 2 मिनट में कर रहा है, दूसरा उसी कार्य को जो है वो 10 मिनट में कर रहा है। तो कार्य को करने में लिया गया जो समय है वो मैटर करता है, जबकि हम लोग जनरल टर्म्स में देखें तो आपके लिए शायद किसी कार्य को करने वाला समय जो है वो मैटर नहीं करे, मगर हम साइंटिफिक वे में देखें और इवन अपनी दैनिक इसमें भी देखें, तब भी हमें जो है वो पता लगता है कि आपने कार्य जो करने के लिए जो टाइम कंज्यूम किया वो मैटर करता है, क्योंकि अगर हमारा एक ही टाइम कार्य में ज्यादा टाइम लग जाए तो उस केस में हम लोग मतलब कि जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि मुझे ऑफिस आना है, अब ऑफिस आने के लिए मैं तो घर से पैदल भी चल सकती हूँ, मेरी कितनी एनर्जी है, मैं 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लगा लूंगी, ठीक है, और अगर मुझे 15 किलोमीटर आना है तो मुझे 1.5 घंटा कितना लगेगा टाइम, ठीक है। अब उस केस में अगर मैं साइकिल से आती हूँ तो साइकिल में जो है वो आपके पैदल चलने के जो पावर है, शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति होगी, मगर आपका टाइम आपके पैदल चलने के कंपैरिजन में कम लगेगा। परंतु अगर हम साइकिल को कंपेयर करें स्कूटर से, तो आप स्कूटर से ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी पावर जो है वो साइकिल की पावर से ज्यादा है। साइकिल हम मैकेनिकल चलाते हैं, वो स्कूटर हम लोग साइकिल आप जो है वो मस्कुलर एनर्जी से चला रहे हैं, जबकि स्कूटर आप मैकेनिकल एनर्जी से चलाएंगे। तो ये जो है कि आपका जो कार्य करना है और उसको टाइम कितने समय में कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द पावर, आपका उसी में पावर है। तो पावर इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य को करने की दर क्या है वो आपकी शक्ति है। तो शक्ति सब लोगों की भिन्न भिन्न होती है, वो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम मशीनों की करें तो मशीनों का जो पावर होता है वो डिफाइंड होता है, जैसे कि आप देखिए आप कभी उसके लिए जाएं वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं तो आप क्या करेंगे, वो बताता है आपको कि आपको कितने किलो की मशीन लेनी है, मतलब कि जितने किलो की मशीन लेनी है उसकी पावर उतनी है, उसको आपको ज्यादा हैवी कपड़े धोने हैं तो उसके लिए आपको हैवी मशीन लेनी पड़ेगी। फिर आप स्कूटर लेने जाते हैं, हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं इंजन कितने सीसी का है, सीसी मतलब इंजन की पावर, कि इंजन की पावर कितनी है। ज्यादा इंजन की पावर होगी तो वो ज्यादा टफ कंडीशंस में भी अच्छे से मूव करेगी। तो पावर जो है दैट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि उसी मशीन से जब हम कार्य करेंगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम समय में ज्यादा कार्य करेगी। अगर हम बात करें मैथमेटिकल टर्म की तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर आपको किसी की पावर चेक करनी है तो आप देखिए कि वो 1 मिनट में कितना कार्य करता है, या उसने किसी कार्य को करने के लिए कितना टाइम लिया उसको डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड द पावर ऑफ दैट मशीन ह्यूमन जो भी आपको चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ पावर की अगर हम बात करेंगे तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, एंड 1 वाट इज पावर स्पेंड व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब आप 1 जूल कार्य करते हैं तब हम लोग बात करते हैं कि आपका 1 वाट पावर है। अगर हम बात करें तो ये वाट जो है हॉर्स पावर में भी लिया जाता है, हॉर्स पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू 746 वाट्स। दैट्स ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी एंड पावर, तीनों चीजों का एसोसिएशन, कार्य करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, कार्य तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य किस दर से किया जाएगा उसे हम शक्ति कहते हैं, उसे हम पावर कहते हैं। थैंक यू।